अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा की पूर्व छात्रा रह चुकी सुश्री किरण बालाजी अरोड़ा के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का 9वां भाग प्रस्तुत करेंगे। किरण जी भगवान बाबा के अनंतपुर स्थित महाविद्यालय संकाय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं।
तो आपने BA 3 साल वहाँ पढ़ाई की अनंतपुर कॉलेज में, उसके बाद आप तिरुपति चली गई
हाँ।
आगे की पढ़ाई करने, वहाँ आपने मास्टर्स डिग्री ली और हाँ। PhD किया हाँ। हिंदी में।
ऐसा हुआ था कि हमारी परीक्षाएं हो चुकी थी और समर कोर्स हुआ था, स्वामी ने परमिशन दी थी हमें, हमने अटेंड किया। और उसके पश्चात जितने भी उन दिनों हर स्टेट से दो नारी कैंडिडेट्स और पुरुष कैंडिडेट्स को परमिशन मिलती थी समर कोर्स अटेंड करने का, अर्थात पूरे भारत से विद्यार्थी आते थे। तो कुछ तो वहीं से निकल गए थे समर कोर्स होने के पश्चात और कुछ जो है पुट्टपर्ती चले आए थे। तो उन दिनों पूर्ण चंद्रा बन ही रहा था, अभी थोड़ा सा रहता था उसका काम, और स्वामी ने इनॉग्रेशन भी नहीं की थी, पर हमें पूर्ण चंद्रा ऑडिटोरियम में लेकर गए थे। उस समय का ये बहुत ही अपने आप में अतुलनीय अद्वितीय रहा था ये जो ऑडिटोरियम है, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर भी एक भी पिलर नहीं है, खंभा नहीं है। तो ये बहुत मेहनत का काम था और उसमें स्वामी की बड़ी कृपा रही, वो अलग ही अनुभव है। तो हमें स्वामी दिखाते हुए, स्वामी हमें वहाँ लेकर देखो कितना विशाल है आदि आदि कहकर हमें वहाँ लेकर गए, नमस्कार विभूति दी। तो हम स्वामी से ये पूछना चाहते थे कि हमें आगे की पढ़ाई कहाँ करनी है, क्या करना है। तो मैं, मेरी बहन और मेरी और 2-4 क्लासमेट्स हम लास्ट की पंक्ति में जाकर अंत में बैठे ताकि हमें थोड़ा समय आराम से मिल जाए, हम स्वामी से पूछ सकें जल्दी में ना हो। तो जैसे ही स्वामी करीब आए मैंने उठकर पूछा और दूसरी मेरी जो क्लासमेट थी उन्होंने भी पूछा। तो स्वामी ने 1, 2, 3, 4 करके उनको चारों को कहा कि तुम लोग BEd करो, टीचर्स की ट्रेनिंग करो, क्योंकि मैं जल्दी ही पुट्टपर्ती में एक स्कूल खोलने वाला हूँ, उसके पहले तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए।
अच्छा
तो इस प्रकार से उन चारों को उन्होंने कहा। तो मैं बार बार बीच में बोलती रही स्वामी मैं भी करूँगी। स्वामी ने कहा नहीं रुको। फिर उन सबको समझाने के पश्चात, कहने के पश्चात स्वामी ने मेरी ओर कहा तुम MA करो। मैंने कहा मैं क्यों MA करूँ स्वामी, मैं भी BEd करूँगी, मैं भी पढ़ती में रह सकती हूँ, स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। स्वामी बोलते नहीं तुम्हें MA करना है। तो मैंने पूछा कौन से विषय में करूँ। तो स्वामी ने कहा तुमने कौन कौन से विषय पढ़े हैं अपने कॉलेज में। तो मैंने बताया स्वामी फिलॉसफी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश पढ़ी है। तो स्वामी सोच में पढ़ते हुए ऊपर देखते रहे और स्वामी ने कुछ नहीं कहा, और कुछ नहीं पढ़ा ऐसे 2-3 बार बोला। तो मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं पढ़ा स्वामी, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो फिलॉसफी में करूँ, स्वामी बोलते नहीं। मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस में करूँ, नहीं। इंग्लिश में करूँ, नहीं। तो फिर किस में करूँगी, स्वामी ने कहा। फिर और कुछ नहीं, मैंने पढ़ा स्वामी इंग्लिश हिंदी सेकंड लैंग्वेज सेकंड ईयर तक पढ़ा था और उसके पश्चात तो हमने नहीं पढ़ा। तो तुरंत स्वामी ने पकड़ लिया, बोलते हिंदी में करो, हिंदी में MA करो, हिंदी में कर सकता है। तो मैंने कहा स्वामी कहाँ करूँ। तो स्वामी ने कहा वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति में जाकर करो। तो मैंने सोचा था मन में कि हिंदी करना है तो उत्तर भारत में अच्छा हो सकेगा, पर स्वामी ने कहा नहीं तिरुपति में ही करना है। और आज मुझे लगता है कि सच में स्वामी ने बहुत कुछ सोच कर मुझे वहाँ भेजा था। तो इस प्रकार से स्वामी ने मेरा निर्णय MA का किया। तत्पश्चात भी मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं स्कूल में कहीं एंट्री पा लूँ, क्योंकि पढ़ती मेरा यानी रोज़ दर्शन मिलेंगे, आनंदपुर में तो रोज़ दर्शन नहीं मिलेंगे। तो मेरा लालच था मैं किसी तरह से पुट्टपर्ती में ही रह जाऊँ। तो जब स्कूल खुला और शुरू हुआ तब भी मैंने 2-3 बार स्वामी से पूछा, स्वामी ने हर बार मना किया, नहीं तुम्हें आनंदपुर ही जाना है, तुम्हें आनंदपुर ही जाना है। फिर मैंने खबर भी भेजी 2-3 बार, उन दिनों कुटुंब राव जी रहा करते थे, चिरंजीव राव जी रहा करते थे, उनके द्वारा भी खबर भेजी। 2 बार स्वामी ने मना करके भेजा, 3री बार स्वामी ने चिरंजीव राव को डांट लगा के भेजा, उसको बोलो शांति से बैठी रहे, उसको आनंदपुर ही जाना है, जब समय आएगा उसको मैं वहाँ लगाऊंगा और उसको जल्दबाजी करके पुट्टपर्ती की नहीं सोचनी है, उसको बोलो आगे से खबर ना भेजे ना पूछे। तो फिर मुझे और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं चुपचाप बैठ गई। वास्तव में हुआ क्या था, जब मैं जब स्वामी ने हमें मुझे MA में हिंदी करने को कहा तो मैं थोड़ा सा प्रसन्न नहीं नज़र आई थी स्वामी को, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि हिंदी में मुझे करना पड़ेगा। पर स्वामी ने कहा नहीं नहीं हिंदी में करो, तुम हिंदी में MA करते ही तुम्हें आनंदपुर में मैं लगा दूंगा। तो मेरे मन में एक संशय आया था, हम छुटपन थे, बिल्कुल इमेच्योरिटी थी शायद, लड़कपन। तो मैंने कहा स्वामी, उन दिनों हुआ ये कहा था कि अनंतपुर के कुछ टीचरों को ना एमफिल कंपलसरी कर दिया गया था यूजीसी से, तो अनंतपुर की कुछ टीचरें तिरुपति में आकर एमफिल कर गई थी। तो मुझे लगा कि एक ही बार सारी पढ़ाई करने में ठीक रहेगा, तो मैंने स्वामी को बढ़कर ये कहा, स्वामी एक ही बार पीएचडी भी कर लूँगी ना एमए के बाद क्यों। तो स्वामी ने कहा नहीं नहीं, तेलुगु में स्वामी ने बोला बड़े एम्फोसिस के साथ कि रावल सिंधी एमए चेसन तरवा था न्यू अनंतपुर के रावल सिंधी, तुम्हें आना ही पड़ेगा अनंतपुर एमए के बाद, बाद में पीएचडी का देखी जाएगी। और ठीक है, फिर मैंने एमए भी किया और बाद में डांट भी पड़ी, तो मैंने अब बोलना बंद कर दिया था अनंतपुर का ही, मुझे पता चल गया मुझे अनंतपुर में ही जाना पड़ेगा और फिर वहीं पर मुझे काम करना पड़ेगा। फिर भी वो ठीक था और मेरी इच्छा थी कि मैं किसी तरह स्वामी के आसपास रहूं, स्वामी के दर्शन प्राप्त होते रहें। इस बीच माता पिता को शादी की पड़ी थी, तो मेरा एमए होते ही स्वामी मेरे पीछे पड़ गए, शादी करो इसकी शादी करो। हमारे पर्सनल इंटरव्यूज देते थे साल में एक दो बार स्वामी, तो यही कहें कि अब इसकी शादी कर दो। अब मैं स्वामी से हर बार लड़ूं कि मुझे तुमने एक बार कहा था कि रावल सिंधी तुम्हें आना ही पड़ेगा एमए के पश्चात, और अब मुझे शादी शादी करके भेज रहे हो, तो मैंने ये पढ़ना ही क्यों था और ये सब क्यों। तो मैं स्वामी से बहुत झगड़ा करती थी, इतना झगड़ा करती थी कि स्वामी ने मुझे पर्सनल इंटरव्यू में ले जाना ही बंद कर दिया। मेरे माँ को बोला ये आएगी तो तुमसे बात नहीं कर सकूंगा, इसको लेकर जाना है कि तुम्हें आना है। तो मम्मी बोलती इसको ले जाओ ना जाओ, मैं तो आती हूँ करके मम्मी चली जाती थी
लड़ाकी को बाहर छोड़ दो,
ये लड़ेगी तुमसे बात नहीं करने देगी। फिर एक बार हुआ क्या, मेरा एमए खत्म हो चुका था और स्वामी वृंदावन गए हुए थे, माता पिता आए तो वृंदावन चले गए थे, वहाँ स्वामी ने फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर मैं पहुँच चुकी थी, माता पिता जी के साथ ही आई थी, मतलब गोरखपुर में ट्रांसफर था तब, साथ साथ ही आ गई थी क्योंकि मेरा एमए खत्म हो चुका था, मैं घर पर थी। तो स्वामी लेकर गए मुझे, पर बोला पहले ही बोला बात नहीं करोगी बीच में, चुप रहोगी और यहाँ बैठ जाओ। मुझे उठाकर थोड़ा सा परे बैठा दिया, वहाँ बैठी रहो और बोलना नहीं, केवल सुनना है तुम्हें और जो मैं बोलूँगा उसके पीछे लड़ाई नहीं करनी। मैं मुंह बनाकर बैठ गई और बस यही शादी शादी। मैंने कहा स्वामी, मेरे मन में बड़ा तड़प कि मैंने स्वामी आपके पास रहने के लिए सब कुछ किया है, ये क्यों मुझे फंसा रहे हो, मैंने नहीं शादी करनी। तो बीच में बोल पड़ी मैं, झगड़ा करने लगी, तो स्वामी बोलते हैं मौनम रखे बैठो अभी नहीं, इस प्रकार से जबरदस्ती करने लगे। मेरे मन में बड़ी दुविधा कि स्वामी आपने ऐसे क्यों बोला, आपके वचन तो सत्य होने चाहिए, अब मुझे आप शादी करने का कह रहे हैं। पर स्वामी एक्चुअली मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मैं सचमुच चाहती हूँ कि नहीं रहना स्वामी के पास, मैं हर त्याग करके रह सकूंगी कि नहीं। एक और बात मुझे याद आती है, जब हमारी सुबम्मा मैडम थी जो हमारी वार्डन थी, उन दिनों जब हम पढ़ रहे थे वो हमें फिलॉसफी पढ़ाती थी
जी,
वो स्वयं इस प्रकार से विवाह से बची थी, वो भी घर से निकल गई थी विवाह के समय और उन्होंने अपने गुरु के पास आश्रम में जाके अपना समय बिताया था काफ़ी समय तक। तो वो हमें बड़ा इंस्पिरेशन देती थी, साथ स्वामी भी एक्चुअली जब भाषण दिया करते थे उसमें शादी के खिलाफ ही बात किया करते थे कि उसमें क्या है, कुत्ता बिल्ली भी अपना परिवार बसाते हैं आदि आदि। तो हमारे मन में एक प्रकार से वितृष्णा थी, कोई आकर्षण नहीं था शादी के प्रति। तो एक बार इस प्रकार से जब हमारे मन में विचार आते थे, हम क्लास में फिलोसफी क्लास में डिस्कस करते थे मैडम के साथ, तो मैडम ने स्वामी को जाकर एक बार कहा, स्वामी ये जो बैच सेकेंड ईयर्स का है वो सब आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई भी शादी करना नहीं चाहता। मुझे याद है तो स्वामी ने बाद में उन्हें हमें आके बताया था कि स्वामी ने कहा था इस प्रकार से तुम्हारे कहने से वो अगर मान जाएं तो ठीक नहीं है, ये तो एक प्रकार की वैचारिक दृढ़ता उनमें ही आनी चाहिए, उनको ही ऐसा निर्णय लेना चाहिए।
बिल्कुल,
जबकि उनके मन में दृढ़ता नहीं आ जाती कल वो तुम्हें ब्लेम करेंगे, ऐसा विचार तुम उनके मन में ना डालो, उनके मन में स्वयं आना चाहिए और जब आएगा तो मैं जरूर अवकाश दूंगा, ऐसा उनको कहा था। फिर मुझे बार बार याद आने लगा कि अब बार बार जब स्वामी करे तो कहीं मेरे मन में तो ये विचार नहीं है, तो मेरे मन में आंदोलन शुरू होगा कि कहीं नहीं मेरे को सेवा करनी है सेवा करनी। तो किस प्रकार से स्वामी हमें तैयार कर रहे थे, मुझे तैयार कर रहे थे। ऊपर से ये भी कि जब मैंने स्वामी ने मुझे एमए करने को कहा था तो मैंने ये भी कहा था स्वामी मैं एक ही बार पीएचडी कर लूंगी और फिर सेवा करने के लिए आऊंगी, स्वामी ने ऐसा ही किया। जब शादी की बहुत बात हुई तो मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया तो स्वामी नहीं मान रहे थे, तो मैंने ही कहा स्वामी एटलीस्ट पीएचडी करने का अवकाश तो मुझे दो, मैं कहीं आसपास आके रहकर आपके दर्शन तो कर सकूंगी। स्वामी ने कहा चलो ठीक है तुम पीएचडी खत्म कर लो फिर जरूर तुम्हें दूंगा अवकाश अनंतपुर में सेवा करने का। ऐसा ही हुआ, तो मेरी पीएचडी भी होगी और मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर ली क्योंकि मैं कुछ ही लोग थे जो फीस देकर करते थे, बाकी सब रिजर्वेशन कैंडिडेट सब होते थे, ज़्यादा लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं थे, तिरुपति का वातावरण ही पढ़ाई का ज़्यादा नहीं था। तो जो हो मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपनी पीएचडी कर ली और मेरे सर
किस विषय में आपका पीएचडी
मैंने हिंदी किया था उपन्यासों के ऊपर।
अच्छा,
मुझे याद है एक बार जब हमें अपने फाइनल एमए में ये निर्णय लेना था कि हमें पोइट्री में करना है स्पेशलाइजेशन या फिक्शन में, तो मेरे मन में भी द्वंद्व था, क्योंकि स्वामी ने हमें एक बार कहा था पढ़ते समय, जब हम पढ़ रहे थे स्वामी के कॉलेज में, कि उपन्यास विद्यार्थी का एक शत्रु है और सिनेमा भी एक शत्रु है, इन दोनों से दूर रहना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि शायद मुझे स्वामी पोइट्री ही लेने को कहेंगे, तो मैंने अपना नाम पोइट्री के लिए दे दिया था। पर फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं हुआ, मैं पूछना चाहती थी, स्वामी वृंदावन में थे तो मैं आई थी पूछने के लिए, और मैंने स्वामी से पूछा था, स्वामी मैं फिक्शन लूँ या पोइट्री लूँ? तो स्वामी दूर देखते हुए थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा फिक्शन लो। मैं समझ नहीं पाई क्यों, पर आज मुझे लगता है कि स्वामी ने जो कुछ किया, एक छोटा छोटा निर्णय भी, वो बड़ी ही मेरे हित का सोचकर ही किया था। तो मैंने फिक्शन में किया फिर पीएचडी अपना, और 2.5 साल के बीच में मैंने लिखना भी समाप्त कर लिया था, और तैयार थी मैं आने के लिए, पर मेरे सर तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास पहले ही बहुत भार है, 2 विद्यार्थियों का मैं पीएचडी चेकिंग कर रहा हूँ अभी, तुम्हारा अभी नहीं होगा, अभी घर जाओ, अभी घर जाओ, 2 महीने बाद आओ और तब तक तुम्हारा देख सकूँगा मैं। 2 महीने बाद आई तो भी मेरा देख नहीं पाए थे सर, उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा और पढ़ो, और पढ़ाया, फिर मेरी पूरी पीएचडी की थीसिस स्वामी ने सर ने दोबारा लिखवाई कि तुम्हारी भाषा बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, और यहाँ के लोगों को शायद समझना है, इसको सरल बनाओ। तो पूरी पीएचडी की मेरी थीसिस मैंने फिर उन दिनों टाइप वगैरह की संभावना नहीं थी, अपने हाथ से लिखी मैंने, फिर भी 3 साल के भीतर मैंने सबमिशन कर दिया था। और स्वामी के कहने पर जबरदस्ती स्वामी ने मुझे घर भेजा, ये भी एक बहुत मनोरंजक घटना है कि समर कोर्स होता था उन दिनों, मैं चाहती थी समर कोर्स अटेंड करूं, तो हम आके वृंदावन में डट गए, मैं और मेरी बहन भी, हम सब यही पूछें कि स्वामी हमें भी परमिशन दो एक स्टूडेंट्स के रूप में अटेंड करने के लिए, एटलीस्ट हम ऑब्जर्वर्स की तरह अटेंड कर सकेंगे। पर उस एक वर्ष में स्वामी ने पाश्चात्य देशों से भी फॉरन कैंडिडेट्स को भी बुलाया था, सो हर देश से 2-2 कैंडिडेट आए थे अटेंड करने, तो जगह नहीं थी, अकोमोडेशन नहीं था, तो स्वामी कह रहे थे तुम लोग घर जाओ, अब इन लोगों को जो नए आए हैं इन लोगों को अवकाश मिले। हम लोग जिद पकड़े थे कि हमें दें, 2-3 बार हमने पूछा स्वामी ने से दर्शन में कि स्वामी हमें परमिशन दिए, स्वामी परमिशन दीजिए, नहीं माने तो स्वामी ने कहा इन लोगों को भगाना पड़ेगा। तो स्वामी ने हमें दर्शन लाइन में आकर डांट लगाई, घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, हमेशा यहाँ टिके रहते हो, इस बार जगह नहीं है, अकोमोडेशन की कठिनाई है, तुम लोग घर जाओ। फिर भी हम 1-2 दिन टिके रहे तो स्वामी ने एक सेवा दल को बोला इन लोगों को ले जाकर स्टेशन में छोड़ कर आओ।
मगर आप लोग स्वामी के कहने पे गए क्यों नहीं?
गए नहीं किस आशा में कि शायद स्वामी हमारी प्रार्थनाओं से द्रवित होकर हमें परमिशन दे दें, इस लालच से हम टिके रहे, क्योंकि स्वामी ने ये नहीं कहा था कि चले ही जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार करें, जाओ जाओ, इस प्रकार से कह रहे थे, स्वामी परसुएट करने का प्रयास कर रहे थे और हम जिद पकड़े हुए थे। तो हुआ ये कि वो एक सेवा दल हम सबको हमारे सामान सहित स्टेशन में छोड़कर वापस जाकर स्वामी को उसने बताया कि स्वामी मैं छोड़ आया हूँ, तब स्वामी ने मतलब
राहत की सांस
ली, की सांस ली कि अब ये सब नहीं
लौट के नहीं आएंगे,
सचमुच नया रास्ता, नई टिकट, कुछ पता नहीं, सब कुछ पूछताछ कर करके घर पहुंचे किसी तरह से। हमारे लिए भी नई जगह थी गोरखपुर, पहले कभी गई नहीं थी मैं पहले गई, बाद में लता आई, तो लता को भी स्वामी ने ऐसे ही भेजा, वो भी मेरे 7-8 दिन के बाद वो पहुंच गई घर ऐसे अप्रत्याशित रूप से, घर में पता भी नहीं, क्योंकि पत्र लिखने का भी समय नहीं है, टेलीग्राम भेजने का समय नहीं है, हमें सीधा उठाकर स्टेशन में छोड़ दिया गया कि जाओ। तो हमें जो ट्रेन जैसे वैसे कर करके हम गए थे, इस प्रकार से स्वामी ने हमें मतलब हमारा हमसे छुटकारा
प्राप्त किया। फिर आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई? आपने अप्लाई किया अनंतपुर में लेक्चरर की जॉब के लिए?
जैसे ही मेरा पीएचडी समाप्त हुआ मुझे वाइवा के लिए बुलाया गया, मैं यहीं पर थी, उन दिनों स्टोर्स नए नए खुले थे, तो वहाँ सहायता वगैरह सेवा वगैरह करती रही। तो वाइवा मेरा समाप्त हुआ और समाप्त करके मैं पुट्टपर्ति आ गई, और इसी आशा से कि अब तो स्वामी मुझे अवकाश देंगे कि मैं सेवा कर सकूं। इस बीच मेरी माँ भी आ गई और मुझे लेने के लिए आई कि अब ये बच्ची वहाँ से यहाँ टिके, यहाँ से हटेगी नहीं पुट्टपर्ति से, इसको ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा, इसका विवाह करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके मम्मी के मन में चिंता, माता पिता की अपनी चिंता थी, वो आई थी। उस समय जब मैं यहाँ पर थी और माँ भी आई थी, माँ को स्वामी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया साथ में, और माँ ने पूछा स्वामी अब मैं तो इसको लेने के लिए आई हूँ, आप आज्ञा दो तभी ये जाएगी, नहीं तो ये जाएगी नहीं, मैं अपनी रिजर्वेशन करवा रही हूँ। तो स्वामी ने कहा तुम अपनी करवाओ, तुम इसकी क्यों करवाओगी, मैंने वचन दिया है उसको कि मैं आनंदपुर में उसको जॉब दूंगा, मैं उसको जॉब दूंगा, तुम उसको छोड़ कर जाओ, मैं अपने वचन का पालन अब करूंगा ज़रूर, तुम जाओ। ऐसे करके माँ को उन्होंने मतलब अपने रिजर्वेशन करवाने के लिए कहा। तो माँ ने अपने 10 दिन बाद, उन दिनों 10-15 दिन में ही रिजर्वेशन हो जाया करती थी, तो मम्मी माँ ने करवा ली। पर इस पूरी परिस्थिति का सौंदर्य ये था कि माँ के जाने से पहले ही स्वामी ने ऐसी परिस्थिति तैयार की कि मुझे जॉब मिल जाए। जब एमए के बाद मैं पूछती थी तो स्वामी ने ये भी कहा था उस समय मुझे शादी के लिए फोर्स करते हुए कि जो नई लड़की हिंदी पढ़ाने के लिए अभी मैंने लगाई है, उसको आए भी 2 साल ही हुए हैं, वो भी PhD है, उसको मैंने अभी लगाया, उसको मैं कैसे कहूँ कि तुम चली जाओ। सी एटिकेट की कितनी सेंसिटिविटी स्वामी में थी कि स्वामी नहीं चाहते कि जिसको उन्होंने लगाया उसको तुरंत भेज दें। तो मेरे लिए ऑप्शन सोच रहे थे स्वामी, उसको भेजना तुरंत नहीं चाहते थे। अब तो मैं तैयार हो गई थी, पूरा PhD वगैरह समाप्त हो गया, वाइवा हो गया, मेरे पास डिग्री मेरे हाथ में थी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट था। तुम स्वामी ने ऐसे कहा, मेरे मन में बहुत आशा हुई। दूसरे ही दिन मैंने अपना पूरा बायोडाटा तैयार किया और रजिस्ट्रार से मिली, चक्रवर्ती जी थे उन दिनों, और कहा कि मुझे इस प्रकार से स्वामी ने भी कहा था, तो मेरी एप्लीकेशन आप रखिए। उन्होंने कहा कि देखो, जो कैंडिडेट अभी लगा है उसका नाम इंदुमती था, वो भी तिरुपति में पढ़ी थी, मेरी सीनियर थी 2 साल की, उसका PhD ख़त्म हुआ और मैंने शुरू किया था, तो वो भी स्वामी की भगत है और एकेडमिक काउंसिल की मेंबर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो क्यों जाना चाहेगी, वो तो जाना नहीं चाहती हैं। तो 7-8 सालों तक तो तुम शांत रहो, जहाँ तुम्हें जॉब मिलती है वहाँ करो, फिर देखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं जाऊँगी, पर मुझे जब भी यहाँ पर अवकाश पैदा हो बीच में तो मुझे अवश्य इत्तला दीजिए, मैं ज़रूर स्वामी के पास ही सेवा करने की इच्छा रखूँगी, और क्योंकि स्वामी ने भी ऐसा ही कहा है मैं अवश्य आऊँगी। तो ऐसा कह के उन्होंने मुझे भेज दिया था। किंतु दूसरे ही दिन एक बहुत छोटी सी स्लिप मेरे पास भेजी गई, और वो भी दर्शन लाइन में अनाउंस करके मेरा नाम, मुझे बाहर बुलाया गया, तो और VC के ऑफिस से एक क्लार्क ने मुझे एक छोटी सी स्लिप दी जिसमें केवल इतना लिखा था, टू डियर किरण बाला, मीट दी VC एट 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग, और सिग्नेचर थे सील के साथ। तो मुझे लगा कि मेरी एप्लीकेशन VC के पास गई होगी, उसमें कुछ मैंने नहीं भरा होगा या कुछ बीच में उनको पूछना होगा, इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो मैं दूसरे दिन 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच गई। VC जी उन दिनों गोकक सर थे, VC पहले VC। बाहर जब मैं मिलने के लिए वेट कर रही थी तो क्लार्क अंदर से आके पूछता है, सर मैडम आप अपने सर्टिफिकेट लाए हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं लाई सर्टिफिकेट्स। बोलते मैडम आपको सर्टिफिकेट्स लाने चाहिए थे। मैंने कहा मुझे तो बताया नहीं गया। दूसरा प्रश्न उसने कहा, मैडम आप अपना थीसिस लाए हैं? मैंने कहा मैं थीसिस भी नहीं लाई, मैं क्यों लेकर आऊँ थीसिस? तो बोलते नहीं मैडम, आपका तो इंटरव्यू होने वाला है, पैनल बैठा हुआ है अंदर, तुम्हें अभी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा कोई पत्र भी नहीं आया, ना उस चिट्ठी जो छोटी सी पत्री मेरे पास आई उसमें ऐसा कुछ लिखा था, मैं तो यूं ही हाथ हिलाते चली आई हूँ। उसके मैं ऐसी बात ही करी मुझे अंदर बुला लिया गया और मेरा पूरा इंटरव्यू हो गया जी। होने के बाद मुझे ये बोल दिया गया, तुम्हारा लेटर तुम्हें भेज दिया जाएगा, तुम सितंबर में किसी भी दिन कॉलेज ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओ।
वो इतना जल्दी है?
इतना जल्दी तो ये ऐसे कैसे हुआ? जिस के कारण मुझे स्वामी कह रहे थे कि मैं भेज नहीं सकता उस कैंडिडेट को जो आप पढ़ा रही हिंदी के लेक्चरर है, वो कैसे, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? बाद में मुझे पता चला कि ये जो इंदुमती, डॉक्टर इंदुमती थी जो पढ़ा रही थी,
जिनने मुझे पढ़ाया है हिंदी की टीचर, हाँ जी,
तो उनको अपने नेटिव जो उनका टाउन था उसके पास कहीं जॉब मिलने की संभावना नजर आई, तो उन्होंने 3 महीने का पे देकर तुरंत
रिजाइन
कर दिया था।
इंस्टेंटली आपके लिए
वैकेंसी स्वामी ने क्रिएट कर दी है। समझ नहीं आता मुझे कैसे, और तभी मेरी माँ को बोला था छोड़कर जाओ, मैं वचन का पालन करूंगा। मुझे पिछले ही दिन, उसके पहले दिन मुझे रजिस्ट्रार ने ये कहा कि 7-8 साल भूल जाओ। 7 दिन भी नहीं हुए थे मुझे लेटर मिल गया अपनी अपॉइंटमेंट का।
अरे वाह,
ये सब कौन कर सकता है? नहीं,
सिर्फ भगवान के हाथ में।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के महाविद्यालय के अनंतपुर स्थित संकाय में सेवारत सुश्री किरण बाला अरोड़ा जी के अनुभवों का 9वां भाग प्रस्तुत किया गया था। उनसे वार्तालाप कर रही थी टीम रेडियो साई की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी। ये भेंट वार्ता 25 मई सन 2012 में रिकॉर्ड की गई थी।